ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टाटा नगर पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन तेज वर्षा के कारण प्रधानमंत्री जमशेदपुर नहीं पहुंच सके। उन्होंने रांची से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रूपये लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 आवासों के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। एक अन्य कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों को राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को हटाने का आह्वान किया। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली में श्री मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राज्य के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। झारखंड के गठन के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य को लूटा है और गरीब तथा जनजातीय समुदाय के लोगों को धोखा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि संथाल परगना और कोल्हन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। इन क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के खतरे बढ़ रहे हैं। जनजातीय आबादी घट रही है और घुसपैठ बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अवसर तलाशने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक विश्वविद्यालय में डिजिटल टॉवर के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल टॉवर जैसी बुनियादी संरचना इस प्रकार के अवसरों का प्रवेश द्वार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां चुनौतीपूर्ण होने के साथ अवसर प्रदान करने वाली भी हैं। उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित हाइड्रोजन जैसी प्रौद्योगिकियां दशा और दिशा बदलने वाली हो सकती हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रत्यक्ष स्वीकृति है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि यह इस्तीफा केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है बल्कि उनकी पार्टी के भीतर आंतरिक उथल पुथल का परिणाम है। इससे पहले श्री केजरीवाल ने घोषणा की कि वे अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व कार्यालय प्रभारी अभिजीत मंडल को 3 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। दोनों को आज सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोप हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ताजा स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इमारत ढहने की एक घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। जाकिर कॉलोनी इलाके में कल एक 3 मंजिला इमारत ढह गई थी। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल सहित राहत टीमें पूरी रात मलबा हटाने में लगी रहीं। मौसम विभाग ने गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में आज बहुत तेज वर्षा और बाढ़ का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और असम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 17 वर्षीय अनमोल का यह पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। उन्होंने फाइनल में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। उन्होंने क्वालिफायर के माध्यम से मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।